जिंदगी की बहार।
प्रिय श्रोताओं, जिंदगी की बहार कार्यक्रम की एक अन्य श्रृंखला के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं सैयद मीसम और मरियम मेहदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि समाज के लोकप्रिय व प्रतिष्ठित लोगों, विशेषकर धार्मिक लोगों के दृष्टिकोणों की समीक्षा बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण और संवेदनशील होती है। स्वाभाविक रूप से इस्लामी समाज में धार्मिक महापुरुषों के वैचारिक व व्यवहारिक रवैये बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मुसलमानों की दृष्टि में पैगंबर इस्लाम दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित व सबसे प्रिय इंसान हैं, जो लोगों तक ईश्वरीय संदेश पहुँचाने का माध्यम है। इस प्रकार से पैगंबर इस्लाम के दृष्टिकोणों की समीक्षा विशेषकर युवाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि इस्लाम ने अपनी सर्वोच्च शिक्षाओं में युवाओं को विशेष महत्व दिया है और जवानी के इस काल को परिपूर्णता तक पहुंचने का साधन मानता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो मानवता के लिए आदर्श थे, युवाओं और युवा पीढ़ी पर ध्यान देने के लिए सदैव बल देते हैं। आज के कार्यक्रम में हम पैगंबर इस्लाम की नज़र में युवा और जवानी के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे।
पवित्र कुरान के अनुसार पैगंबर इस्लाम ईश्वर के बंदों में शिष्टाचार और नैतिकता में सबसे आगे थे, इसलिए वो लोगों के व्यक्तित्व के निर्माण में जवानों की भूमिका और उसके प्रभाव पर सदैव बल देते थे। पैगंबर इस्लाम लोगों को अच्छा व्यवहार करने तथा और युवाओं की केंद्रीय भूमिका की सिफारिश करते थे और कहते थे कि मैं तुम्हें सिफारिश करता हूँ कि युवाओं के साथ भलाई और अच्छाई से बर्ताव करें, क्योंकि उनके दिल बहुत अधिक नाजुक होते हैं। आशा, साहस, पालन पोषण और आत्मविश्वास का आभास पैगंबर इस्लाम की अमर शिक्षाओं के भाग हैं, जो युवाओं को संबोधित करते हुए वो प्रयोग करते थे।
पैगंबर इस्लाम सदैव युवाओं पर विशेष दृष्टि रखते थे। वे युवाओं के बारे में अपनी विभिन्न सिफारिशों में युवाओं के प्रशिक्षण और उनके अधिकार दिलवाने पर बहुत अधिक बल देते थे। शायद ये कहा जा सकता है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अधिकार उसका सही और स्वच्छ प्रशिक्षण है। पैगंबर इस्लाम के कथन में आया है कि कोई भी पिता अपने संतान के लिए अच्छे संस्कार से मूल्यवान कोई भी चीज़ विरासत में नहीं छोड़ता। युवा का दिल वास्तविकता को स्वीकार करने को तैयार रहता है और यदि सही और अच्छा प्रशिक्षण हो तो उसके द्वारा वो वास्तविक कल्याण प्राप्त कर सकता है। पैगंबर इस्लाम एक अन्य स्थान पर कहते हैं कि मैं आप लोगों को किशोरों और युवाओं के बारे में भलाई की सिफारिश करता हूँ कि उनका दिल बहुत नर्म और गुणों को स्वीकार करने वाला होता है। ईश्वर ने मुझे ईश्वरीय दूत बनाया ताकि मैं लोगों को ईश्वर की दया की शुभ सूचना दूँ और उसके पापों से दूर रखूँ। युवाओं ने मेरी बातें स्वीकार की और मुझसे प्रेम पर प्रतिबद्ध हुए।
हर देश का भविष्य उस देश के युवाओं के हाथ में होता है, अर्थात देश का भविष्य युवा बनाते हैं। इस बात के लिए देश में संचालन की शक्ति हो तो इसके लिए ये करना होगा कि उस जगह के युवाओं और स्थानीय जनशक्ति को जिम्मेदारी दे दी जाए ताकि वो अपनी शक्ति से ऐसे लोगों को सामने लाएं जो देश का भविष्य उज्ज्वल कर सकें। ये काम युवा से बेहतर ढंग से कोई नहीं कर सकता। पैगंबर इस्लाम जिन पर समाज के प्रबंधन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, इस विषय को बहुत अधिक महत्व देते थे। उदाहरण स्वरूप, उन्होंने मुसलमानों की सेना के सेनापति का संवेदनशील पद उसामा बिन जैद नामक 18 वर्षीय युवक को सौंपा। यद्यपि कुछ लोगों के लिए ये नियुक्ति बहुत ही अप्रत्याशित थी, किंतु पैगंबर इस्लाम ने अपने भाषण में उसामा बिन जैद का समर्थन किया और उनकी योग्यता, ईमान, ज्ञान, शिष्टाचार, ईश्वरीय भय और साहस को बयान किया और योग्य युवाओं को महापदों के योग्य बताया।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई पैगंबर इस्लाम द्वारा युवाओं को जिम्मेदारियां सौंपे जाने के बारे में कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने अपनी आयु के एक संवेदनशील चरण में एक बड़ी जिम्मेदारी एक 18 वर्षीय युवक के हवाले की। युद्धों में स्वयं पैगंबर इस्लाम ही सेनापति हुआ करते थे, किंतु अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब उन्हें ये विश्वास था कि वो दुनिया से जाने वाले हैं, रोम साम्राज्य पर सैन्य चढ़ाई में स्वयं की उपस्थिति को असंभव जानते थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा और कठिन काम था। इस काम के लिए सेना का चयन आवश्यक था ताकि रास्ते में कोई रुकावट पैदा न हो। ये जिम्मेदारी एक 18 वर्षीय युवा के हवाले की गई। पैगंबर इस्लाम अपने साथियों में से किसी 50-60 साल के किसी युद्ध के अनुभवी व्यक्ति को चुन सकते थे, किंतु उन्होंने एक 18 वर्षीय युवक को चुना और वो उसामा बिन जैद थे।
पैगंबर इस्लाम ने उनके ईमान और शहीद की संतान होने के अतीत से लाभ उठाया। उन्होंने उसामा बिन जैद को उस स्थान पर भेजा जहाँ पर 2 साल पहले उनके पिता जैद बिन हारिसा शहीद हुए थे। पैगंबर इस्लाम ने इस युवा को मुसलमानों की सेना का सेनापति बनाया, जबकि सेना में बहुत से पुराने साथी और अनुभवी सिपाही शामिल थे। अर्थात एक उभरती उम्र के लड़के के नेतृत्व में अनुभवी सैनिकों और वरिष्ठ सैनिकों को भेजा। पैगंबर इस्लाम ने उनसे कहा कि जब उस स्थान पर पहुंचना जहां तुम्हारे पिताजी शहीद हुए थे, अर्थात मौत नामक वो स्थान जो रोम साम्राज्य का केंद्र था, वहां पर तंबू लगाना, और उसके बाद उन्हें युद्ध के आदेश दिए। पैगंबर इस्लाम की दृष्टि में युवा सैनिक इतने अधिक महत्वपूर्ण हैं।
वे ईरान में इस बात की ओर संकेत करते हुए इस शक्तिशाली ऊर्जा के प्रयोग और क्षमताओं के प्रयोग पर बल देते हैं और कहते हैं कि आज हमारे देश में बहुत अधिक उसामा बिन जैद हैं, हमारे पास बहुत अधिक युवा हैं, इनमें बड़ी संख्या में महान युवक और युवतियां हैं जो हर मैदान में उपस्थित होने के लिए तैयार हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के मैदान में, सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र में, निर्धनता उन्मूलन और निर्माण के लिए विभिन्न मैदानों में उपस्थित हर क्षेत्र में, हर मैदान जो उनके लिए बनाया जाएगा और उन्हें मौका दिया जाएगा उपस्थित होंगे।
पैगंबर इस्लाम इस्लाम धर्म पहुंचाने और ईश्वरीय शिक्षाएं पहुंचाने के लिए भेजे गए थे। इस बात के दृष्टिगत कि समस्त मनुष्य विशेषकर मुसलमान पूरी आज़ादी और चेतना के साथ अपना धर्म चुने, सलाह देते हुए कहते हैं कि युवा काल में धर्म की महत्वपूर्ण बातें मुस्लिम को सिखाई जानी चाहिए ताकि वो धर्म के बारे में उचित जानकारी न रखने के कारण पथभ्रष्ट न हो जाए। पवित्र कुरान उन विषयों में से एक है जिसको पढ़ाए जाने के लिए युवाओं पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि अपनी संतानों को कुरान सिखाओ क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान में सबसे शालीन शिक्षा है।
पैगंबर इस्लाम ने अपनी पैगंबरी के काल में, चाहे मक्के में हो या मदीने में, बल्कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में युवा वर्ग के साथ एक विशेष संबंध रखा, यहाँ तक कि वो कुछ गैर मुस्लिम युवाओं पर विशेष रूप से ध्यान देते थे। इस प्रकार से उन्होंने उनके दिलों को इस्लाम की ओर मोड़ दिया। कभी कभी जब उनमें से कुछ को नहीं देखते थे तो उनको तलाश करने जाते थे।
बताया जाता है कि एक यहूदी युवक था जो सदैव पैगंबर इस्लाम के पास आता जाता था। उसके और पैगंबर इस्लाम के मध्य इतने घने संबंध हो गए कि पैगंबर इस्लाम उसे आसपास संदेश पहुंचाने के लिए भेजते थे। पैगंबर इस्लाम ने उसे कुछ दिन नहीं देखा, अपने साथियों से उसके बारे में पूछा। किसी ने कहा कि वो मृत्युशैया पर है, मानो उसका दुनिया में आज अंतिम दिन और परलोक में पहला दिन है। पैगंबर इस्लाम अपने कुछ साथियों के साथ उसके घर गए और उसे घर में बेहोश पाया। पैगंबर इस्लाम ने उसे आवाज़ दी। यहूदी युवक ने अपनी आंखें खोली और कहा, मैं उपस्थित हूँ या अबुल कासिम। पैगंबर इस्लाम ने उससे कहा कि ईश्वर के एक होने और मेरे उसके पैगंबर होने की गवाही दो। उस युवा ने पास खड़े अपने पिता की ओर देखा और अपने यहूदी पिता के सम्मान में कुछ भी नहीं कहा। पैगंबर इस्लाम ने दूसरी बार उससे यही कहा, फिर उसने अपने पिता की ओर देखा और कुछ भी नहीं कहा। पैगंबर इस्लाम ने तीसरी बार उससे वही कुछ कहा। पास खड़े उसके पिता ने उससे कहा कि मेरे बेटे, मेरा ख्याल न करो, तुम्हारे पास चयन का अधिकार है, जो चाहो कहो। इसी मध्य युवा ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं। उसके बाद उसका निधन हो गया। पैगंबर इस्लाम ने इस ताज़ा मुसलमान युवक की नमाज जनाजा पढ़ाई और उसको दफन करने के बाद अपने घर लौटे और रास्ते में कह रहे थे कि ईश्वर का आभार कि आज मेरी वजह से एक मनुष्य नरक की आग से मुक्ति पा गया।
پیغمبر اسلام اپنے کال کے ایک یوا کو سفارش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہے یوا، تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں۔ ایشور کے ادھیکار کا دھیان رکھو تاکہ ایشور بھی تمہاری رکشا کرے۔ اپنے پالنہار کے ادھیکاروں کو بجا لاؤ اور اس سے فرار نہ ہونے کا پریاس کرو۔ جب بھی سہایتا مانگو، ایشور سے سہایتا مانگو۔ یدی پوری مانو جاتی ایکترت ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کنتو ایشور نے جو کچھ تمہارے لیے نردھارت کیا ہے، یدی سب ایکترت ہو جائیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کنتو جو کچھ ایشور نے تمہارے لیے نردھارت کیا ہے۔